स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पत्रस की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है पवित्रता, सत्य ज्ञान और पुनरागमन। हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हुए, किन्तु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मेरे ये यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशु।
Do प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दूसरा पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम सब पिछले अध्ययन में देख रहे थे, जहाँ पर पत्रस कहता है कि विश्वास, संयम, सद्गुण, समझ, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, प्रेम वर्तमान ही न रहे पर बढ़ते जाएं, तो वे हमें निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, उनके जीवन में शांति और आनंद देने पाए। पिताजी, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में है, निराश और परेशान है, किसी प्रकार की तनाव में है। आप उन्हें शांति दें, उन्हें छुटकारा दें, ताकि आज का वचन उनके जीवन के लिए होने पाए। आप हम सबसे बोले और बातचीत करें और हमारी सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब दूसरे पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, और पत्रस ने हमें बताया है कि हमें सद्गुण, समझ, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति रखना है और उसमें बढ़ते जाना है, और वह हमें यह भी बताता है कि जो विश्वासी निष्फल है उनमें ये गुण नहीं है और वे अंधे हैं, वे अपने पापों के धोए जाने को भूल चुके हैं। अतः हमें अपनी बुलाहट और चुने जाने का और उसको सिद्ध करने का यत्न करना है, जिससे कि हम ठोकर ना खाएं और प्रभु यीशु के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरा पत्रस की पत्री एक अध्याय उसके 14 पद को पढ़ें। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पत्रस वह बात कहना चाहता है जो प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद गलील सागर के तट पर उनके लिए नाश्ता तैयार करने के बाद कही थी, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 18 और 19 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पत्रस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, पत्रस की दूसरी पत्री का यह अंश परमेश्वर के वचन के महत्वपूर्ण अंशों में से एक है। मैंने इसका गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया है, जिससे कि हम पत्रस की बात को जाने और अच्छी रीति से समझें। अब आप समझ गए होंगे कि मैं इस पत्री को पत्रस का मरण गीत क्यों कहता हूँ। यह उसके मरण शया के वचन है। मनुष्य चाहे कभी भी काम की बात ना करे, वह अपने मरते समय अवश्य ही काम की बात करेगा। वह चाहे आजीवन झूठ बोलता रहा हो, परंतु मरते समय वह सच बोलेगा। उत्पत्ति की पुस्तक 49 अध्याय में याकूब मरते समय अपने 12 पुत्रों को एकत्र करके उनके लिए भविष्यवाणी करता है जो सच सिद्ध हुई। मूसा जानता था कि वह प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वह मोआब के नीबो पर्वत पर प्राण त्याग देगा। उसने याकूब के समान 12 गोत्रों को आशीष दी। वह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रबोधन था। यहोशू ने भी मरने से पहले इसराइल को अंतिम संदेश दिया और उन्हें परमेश्वर की सेवा करने की चुनौती दी थी तथा अपने विषय में कहा, यहोशू 24 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। मेरे प्रियो, दाऊद ने मरते समय सुलेमान से कहा, मैं तो कूच करने वाला हूं। यह कैसा अद्भुत चित्रण है। सब कब्रिस्तान की राह पर हैं और उसने सुलेमान को मंदिर निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा और संपूर्ण इसराइल को उसके साथ सहयोग करने का आग्रह किया। इसे हम पहला इतिहास 29:1 पद में देखते हैं। मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। प्रभु यीशु ने क्रूस की मृत्यु के पूर्व महिमामय पुनरुत्थान से पूर्व अपने शिष्यों को कैसा महान सत्य समझाया था। पौलुस ने भी तिमोथियुस को अपना अंतिम संदेश दिया था जिसे हम 2 तिमोथियुस 4:6-8 पद में पढ़ते हैं। अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। अब पत्रस कहता है कि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। मेरे प्रियो, प्रथा के अनुसार पत्रस का सिर नीचे था, परंतु मेरा अर्थानुवाद यह है कि प्रभु यीशु ने आकाश की ओर निहारा था जबकि पत्रस सिर झुकाकर मरा था, क्योंकि वह अपने को सिर उठाने योग्य नहीं समझता था। पौलुस और पत्रस दोनों ही ने मानवीय शरीर के लिए तंबू शब्द काम में लिया था। 2 कुरिन्थियों की पत्री 5:1 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। मेरे मित्रों, यह डेरा या तंबू अत्यधिक क्षणभंगुर है। यदि आप ना माने तो सड़क के बीच आ जाएं और देखें कि आपका तंबू कैसे उठता है। मरने पर यह देह मिट्टी में सो जाती है, मिल जाती है। इसी मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया था। हमारे शरीर में मिट्टी के 15-16 तत्व पाए जाते हैं। यही मानव शरीर की रचना है। मृत्यु में शरीर मिट्टी से और मिट्टी में मिल जाता है, सो जाता है अर्थात लेट जाता है। और साहित्यिक मूल भाषा में इस शब्द का अर्थ भी यही है, सो जाना। 2 कुरिन्थियों के पत्र 5:8 पद में पौलुस कहता है कि हम शरीर में अनुपस्थित होकर प्रभु के पास उपस्थित हो जाते हैं। पत्रस और पौलुस मृत्यु के विषय यही विचार रखते थे। शरीर सो जाता है परंतु आत्मा नहीं मरती। पुनरुत्थान शरीर का है, आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा नहीं मरती है। मूल यूनानी भाषा में पुनरुत्थान के शब्द का अर्थ है खड़ा होना, अर्थात शरीर का खड़ा होना। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं भविष्यवाणी की पूर्ति द्वारा धर्मशास्त्र की प्रामाणिकताएं या प्रामाणिकता की सत्यता। आइए हम पढ़ें दूसरा पत्रस एक अध्याय उसका 15 पद, लिखा हुआ है, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। कहता है मेरे कूच करने के बाद। कूच का मूल अर्थ है निर्गमन। वह अपने डेरे से निकल कर जाएगा, वह वस्त्र की नाई उसे उतार देगा। कूच शब्द से प्रकट होता है कि मृत्यु अंतिम नहीं है। इसराइल के मिस्र से निकल आने के बाद मिस्रियों ने कहा था अंत हुआ, परंतु वह अंत नहीं था। जी हाँ, इसराइल वहां से कूच करके जंगल से होता हुआ प्रतिज्ञा के देश में आया। मिस्र तो आज भी उनके साथ पूरा व्यवहार समाप्त नहीं कर पाया है। पत्रस के लिए मृत्यु निर्गमन था, अंत नहीं। तब वह कहता है इन बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। पत्रस कहता है कि मृत्यु से पूर्व वह हमें चिर स्मरणीय कुछ बातें बताना चाहता है, और एक मुख्य बात है जिस पर वह सबसे अधिक बल देता है, वह है परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता। मेरे प्रियो, अब पत्रस के इस पत्र को समझना कठिन है, परंतु आज संसार में दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक बल शक्ति है जो आपको केंद्र की ओर खींचती है, और दूसरी वह है जो आपको केंद्र से दूर ले जाना चाहती है। यदि आप किसी वस्तु को धागे से बांधकर अपने सिर के चारों ओर घुमाएं, तो उस पर दो बल या शक्तियां काम करते हैं, एक जो उसे आपसे दूर ले जाने के लिए धागों को खींचता है, और एक वह जो उसे केंद्र से जोड़कर रखने के लिए धागों को थामे रहता है। पत्रस परमेश्वर के वचन के संबंध में इन दो शक्तियों की चर्चा करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो हमें परमेश्वर से जोड़कर रख सकती है। हमारा रेडियो कार्यक्रम सुनने वाले एक शराबी ने पत्र लिखकर बताया कि परमेश्वर के वचन ने उसे शराब से अलग कर दिया है, छुटकारा दे दिया है। पत्रस पहले ही कह चुका है कि हमें अपनी बुलाहट और अपने चुने जाने को सिद्ध करने का यत्न करना चाहिए। वह हमें बताएगा कि एक ऐसा अधिकार है जिस पर हम निर्भर कर सकते हैं, हो सकते हैं। अब कोई पूछे, आप कैसे कह सकते हैं कि बाइबल वास्तव में परमेश्वर का वचन है? आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस एक अध्याय उसका 16 पद, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। मेरे प्रियो, हमारे ध्यान देने योग्य यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। लिखा है वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। बाइबल न तो झूठा ग्रंथ है और न ही परियों की कहानी है। बाइबल दंत कथा भी नहीं है। बाइबल ऐतिहासिक पुस्तक है और तथ्यों का संग्रह है। यदि आप सत्यनिष्ठ हैं और अपने पापों का त्याग करना चाहते हैं, तो परमेश्वर इसे आप पर सत्यापित करेगा। यदि आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, तो उसका कारण यह नहीं कि आप मानसिक रूप से अंधे, परंतु यह कि आप अपने पापों से अलग होना नहीं चाहते हैं। जब हम पापों का त्याग करना चाहते हैं, तो परमेश्वर बाइबल को हम पर सत्य सिद्ध करेगा। आगे कहता है हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। पत्रस ने उसके प्रताप को कब देखा था? आगे चलकर पत्रस हमें बताएगा कि वह प्रभु यीशु के रूपांतरण की चर्चा कर रहा है। दूसरा पत्रस एक अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। मेरे प्रियो, यहाँ स्पष्ट होता है कि पतरस प्रभु यीशु के रूपांतरण का उल्लेख कर रहा है। हमें इस घटना के महत्व को समझना है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 28 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। यहाँ प्रभु यीशु किसके लिए कह रहा है कि वे मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे? दुर्भाग्य से यहाँ अध्याय समाप्त होता है, परंतु मूल लेखों को अध्यायों में विभाजित नहीं किया गया है, अतः यह वृतांत यहाँ समाप्त नहीं हुआ। आगे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु का रूपांतरण प्रभु राज का एक लघु दृश्य है। प्रभु के साथ मूसा और एलिय्याह दिखाई दिए थे। मूसा पुराने नियम में व्यवस्था का प्रतीक था और एलिय्याह पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं का प्रतिनिधि था। वे किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? वे प्रभु यीशु की मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे, इस संसार से उसके स्वर्गीय पिता के पास जाने के विषय में। उन्होंने पुराने नियम में यही लिखा था और प्रभु यीशु के रूपांतरण पर वे इसी बात की चर्चा कर रहे थे। ये तीनों शिष्य प्रभु यीशु के रूपांतरण का दृश्य देख रहे थे। ये तीनों जीवित पवित्र जनों के प्रतिनिधि थे। मूसा और एलिय्याह पुराने नियम के मृतक भक्तों के प्रतिनिधि थे। उस समय कलीसिया नहीं थी, परंतु पतरस, याकूब और यूहन्ना विश्वासियों की देह कलीसिया का मूल रूप थे। वे भावी प्रेरित थे। इस प्रकार प्रभु यीशु का रूपांतरण हमें प्रभु राज का लघु दृश्य प्रदान करता है। मेरे मित्रों, रूपांतरण के तुरंत बाद प्रभु यीशु उन शिष्यों के साथ पर्वत से नीचे उतरा और देखा कि वहां एक पुरुष अपने पुत्र को लिए खड़ा है जिसमें दुष्ट आत्मा था। उस बालक के लिए अन्य शिष्य कुछ भी नहीं कर पाए थे। दर्शक शिष्यों का ठट्ठा कर रहे थे। यह आज का परिदृश्य है। आज प्रभु राज रुका हुआ है और प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। उसके साथ पुराने नियम और नए नियम के सब पवित्र जन जो इस संसार से कूच कर गए हैं उपस्थित हैं। इस संसार में हम दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्यों के मध्य में वास कर रहे हैं। यदि आपको संदेह हो तो टीवी देखें या समाचार पत्र को पढ़ें। संसार अव्यवस्था में है। कलीसिया के पास संसार के लिए आशा और परमेश्वर के सामर्थ का संदेश होना चाहिए, परंतु वह इससे दुष्ट आत्मा ग्रस्त संसार के लिए किसी प्रकार सहायता नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि कलीसिया को ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है। यह एक प्रकार से सही भी है, क्योंकि कलीसिया पिता परमेश्वर का कार्य नहीं कर रही है जैसा उसके लिए हमें करना चाहिए और जो हमारे लिए अनिवार्य है। अतः पतरस कहता है कि उसने प्रभु यीशु के प्रताप को अपनी आंखों से देखा था और उसने यह भी सुना था, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मेरे मित्रों, यह घटना भविष्यवाणी के वचन की पुष्टि के लिए थी। यह निश्चय ही हम सबके लिए है, क्योंकि परमेश्वर निश्चय ही हमारे बीच में है। वह चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करे ताकि आप प्रतिदिन प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले।